नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से लखपति बिटिया योजना लागू करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षा के डिजिटलीकरण के लिए सरकारी स्कूलों में 101 अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। अशोक कुमार को दिल्ली के नए मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। दिल्ली नगर निगम ने 91 शिक्षकों को वर्ष 2025 के निगम शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया और नई दिल्ली में एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्राची गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से दिल्ली लखपति बिटिया योजना लागू करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सचिवालय में हुई आज प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के प्रत्येक घर से 2 बेटियों को उनकी शिक्षा के लिए 56,000 तक की राशि प्रदान कराई जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस योजना को स्नातक शिक्षा तक लागू किया जाएगा, जिसके तहत राशि की परिपक्वता होने पर कम से कम 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आवेदन के लिए बेटी का टीकाकरण और मान्यता प्राप्त विद्यालय से अध्ययन अनिवार्य है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सरकार 160 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी।
दिल्ली लखपति बिटिया योजना, जिसमें हम हर बच्ची को जो दिल्ली की निवासी होगी, जिसका परिवार दिल्ली में रहता होगा, घर में 2 सर्वाइविंग बच्चियों को हम देंगे और इसका अमाउंट हम 20,000 रुपए लगभग हर बच्ची पे बढ़ा देंगे। जो पहले 36,000 था उसको हमने 56,000 किया है। और 12वीं में एंटर होने पे नहीं, हमने मोटिवेट किया है कि आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी है। आप अपनी ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको ये मैच्योरिटी मिलती है और उस मैच्योरिटी पे आपको मिनिमम 1,00,000 रुपया मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने आज राजधानी के सरकारी स्कूलों के लिए 101 अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब्स का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मान सरोवर गार्डन स्थित सर्वोदय विद्यालय और दिलशाद गार्डन के जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान में नवनिर्मित इमारतों का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि शहर में शिक्षा का स्तर बेहतर हो, स्कूलों का बुनियादी ढांचा आधुनिक हो और हर विद्यार्थी को डिजिटल विधाओं का समान अवसर मिल सके।
सबसे बेहतर क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड सबसे ज्यादा, कंप्यूटर लैब सबसे ज्यादा, बेहतरीन स्पोर्ट्स ग्राउंड यदि कहीं होंगे तो वो दिल्ली में हो। एक नई स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन, 101 कंप्यूटर लैब्स का उद्घाटन, डाइट की एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन, अपने बच्चों के लिए कोई भी काम हम करने से हिचकिचाएंगे नहीं।
वहीं शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि राजधानी के सरकारी स्कूलों में 7,000 से अधिक नए कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 7,000 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स भी विद्यालयों में लगाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष थी। आज उनके नेतृत्व में दिल्ली में हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड हो, जहां तक के लक्ष्य को हम पूरा करने जा रहे हैं। हमें शपथ लिया भी 1 वर्ष नहीं हुआ है और आज इस नई बिल्डिंग के साथ साथ जो 100 स्मार्ट जो ICT लैब्स आपको उपलब्ध कराई गई है, ये बच्चों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लाएंगे। इसके अलावा 7,000 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स का टेंडर हो चुका है।
दिल्ली के सहकारिता विभाग मंत्री रविंद्र इंद्रास सिंह ने आज दिल्ली सचिवालय में थ्रिफ्ट और क्रेडिट सहकारी समितियों के साथ बैठक की। श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान सहकारिता क्षेत्र के सदस्यों की भागीदारी, पारदर्शिता और वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुझावों तथा प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा तथा वित्त सेवा और भारतीय रेलवे प्रबंधन प्रणाली लेखा के प्रशिक्षकों अधिकारियों के एक ग्रुप से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये अधिकारी वर्तमान में फरीदाबाद स्थित अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि साइबर सुरक्षा अब देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में साइबर अपराध को खत्म करने के लिए कई पहल शुरू की है। श्री शाह ने कहा कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C साइबर अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। उन्होंने देशवासियों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। गृहमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी के संकट से देश को बचाना सभी सरकारी विभागों की जिम्मेदारी है।
गृह मंत्रालय स्वतंत्र रूप से I4C, राज्य की पुलिस, CBI, NIA, ED, दूरसंचार विभाग, बैंकिंग सचिवालय, IT मिनिस्ट्री, RBI और न्यायपालिका, ये सभी साइबर अपराध को कम करने के लिए और रोकने के लिए संभवतः सभी प्रयास कर रहे हैं।
निर्वाचन आयोग ने अशोक कुमार को दिल्ली का नया मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। वह RLS वाज की जगह कार्यभार संभालेंगे। आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार ग्रहण करना होगा। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिया है कि वे 8वीं दिल्ली विधानसभा समिति की बैठकों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें। सरकार ने सचिवों से अनुरोध किया है कि सभी दस्तावेजों और रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत करें। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय को मजबूत करना है। नीति आयोग ने नई दिल्ली में विकसित भारत और नेट जीरो की दिशा में 4 अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। इन रिपोर्टों में समग्र रोडमैप, व्यापक आर्थिक प्रभाव और वित्तीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया है। रिपोर्टों के विमोचन के दौरान मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने इन्हें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बताया। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के सर्जरी वार्ड में पिछले वर्ष 10,000 से अधिक बड़े ऑपरेशन किए गए। संस्थान ने बताया कि यह उपलब्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने, क्षमता विस्तार करने और मानव संसाधनों को सहयोग प्रदान करने पर केंद्रित सरकारी नीतियों के तहत हासिल की गई है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए संस्थान के शल्य चिकित्सा विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सुनील चुंबर ने बताया कि नई दिल्ली एम्स देश का एकमात्र चिकित्सा संस्थान है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है।
हमने पिछले वर्ष में 10,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए अंडर जनरल एनेस्थीसिया एंड 17,000 ऑपरेशन किए हमने लोकल एनेस्थीसिया में। ये एक तरह का माइलस्टोन है हमारे सर्जरी ब्लॉक के लिए, जो पूरे देश में कोई ऐसा सेंटर नहीं है जो ऐसी अचीवमेंट बता सके।
दिल्ली नगर निगम ने आज केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में निगम विद्यालयों के 91 शिक्षकों को वर्ष 2025 के निगम शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता हैं और उनके हाथों में युगों को परिवर्तन करने की क्षमता है। वहीं उप महापौर जय भगवान यादव ने कहा कि निगम के विद्यालयों में दाखिले के लिए आने वाले गरीब विद्यार्थियों को दस्तावेजों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रखा जाए। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में निगम के विद्यालयों से पढ़े 22 पूर्व विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। डाक विभाग ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड NSE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक रिपोर्ट।
इस समझौते के अंतर्गत भारतीय डाक के व्यापक डाक नेटवर्क के माध्यम से म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण को सक्षम बनाया जाएगा। इस समझौते के अंतर्गत डाक विभाग के चयनित कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रमाणित म्यूचुअल फंड वितरक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी अनिवार्य प्रमाणन और नियामक अनुपालन के अधीन NSE के म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के माध्यम से म्यूचुअल फंड उत्पाद और संबंधित निवेशक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे। अनिवार्य प्रमाणन और नियामक अनुपालन में राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान प्रमाणन और कर्मचारी विशिष्ट पहचान संख्या पंजीकरण शामिल है। संचार मंत्रालय ने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी भारत डाक के भरोसे, सुलभता और व्यापक पहुंच को NSE के बाजार अवसंरचना और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ मिलाकर वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से देश के विभिन्न हिस्सों से बच्चों के लापता होने की घटनाओं के पीछे किसी राष्ट्रव्यापी नेटवर्क या राष्ट्र विशिष्ट समूह की मौजूदगी का पता लगाने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने कहा कि ये पता लगाना जरूरी है कि इन घटनाओं के पीछे कोई समानता है या ये आकस्मिक घटना है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को सभी राज्यों से आंकड़े एकत्र करने को कहा है। वहीं सरकार की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने कहा कि लगभग एक दर्जन राज्यों ने लापता बच्चों और अभियोजन से संबंधित आंकड़े नहीं दिए हैं। पीठ ने आंकड़े न देने वाले राज्यों की आलोचना की और कहा कि जरूरत पड़ने पर वे इस संबंध में कड़े आदेश पारित सकती है। न्यायालय एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कई राज्यों में लापता बच्चों की बढ़ती संख्या को उजागर किया गया था। संजीव की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निवेश धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी दी कि इस गिरोह ने एक नकली निवेश कंपनी का प्रतिनिधि बनकर पीड़ित से शेयर बाजार में IPO में निवेश करने के बहाने 31 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता कल 200 विभिन्न जनजातीय जिलों के युवा प्रतिभागियों, CRPF, BSF और ITBP के 20 कर्मियों तथा युवा और खेल मंत्रालय के 36 युवा अधिकारियों से संवाद करेंगे। यह संवाद मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का एक हिस्सा है। दिल्ली के भारत मंडपम में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAT द्वारा भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव प्रगति मैदान में 1 से 4 मई तक चलेगा। इसी कड़ी में हुई एक बैठक के दौरान CAT के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस 4 दिवसीय महोत्सव में देश भर से लगभग 2000 से अधिक पवेलियन के माध्यम से भारतीय उत्पादों तथा विभिन्न सेवाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड ने आज जानकारी दी है कि भूमिगत जलाशयों और पोस्टर पंपिंग स्टेशनों की वार्षिक सफाई के कारण कल और बृहस्पतिवार को राजधानी के कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार कल टीकरी गांव, मुंडका और महरौली के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। वहीं बृहस्पतिवार को अर्जुन पार्क, इंदिरा पार्क, नंगली, सकरावती, किशनगढ़ और मकसूदाबाद के आसपास के इलाके प्रभावित रहेंगे। नई दिल्ली में एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में प्राची गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्राची ने जूनियर वर्ग के मुकाबले में टोमिरिस अमानोवा को हराया है। राजधानी में दिनभर धूप खिली रहने के साथ ही मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से लखपति बिटिया योजना लागू करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षा के डिजिटलीकरण के लिए सरकारी स्कूलों में 101 अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। अशोक कुमार को दिल्ली के नए मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। दिल्ली नगर निगम ने 91 शिक्षकों को वर्ष 2025 के निगम शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। और नई दिल्ली में एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्राची गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।